सीन ऐसा है ना कि सबसे पहले कैमरी अगर किसको बोला ना दिमाग में तो क्या आता भाई, मेरे दिमाग में तो एक ही चीज आता है टोयोटा। और टोयोटा आया उसका मतलब क्या है, रिलायबिलिटी।
रिलायबिलिटी तो है
भाई। मैं टोयोटा के सामने दूसरा कोई ब्रांड आ गया तो मैं उसको बोलूंगा नहीं कि वो रिलायबल है जब तक वो उसको कम्पीट करने वाला ब्रांड नहीं है। मेरे को पता नहीं टोयोटा अपना स्पोर्ट्स सेगमेंट क्यों बंद किया, बट
उनका वो जीआर जीआर वाला जो
सेगमेंट है वो बंद कर दिया, बट उनको नहीं करना चाहिए था
वो ग्लोबली।
अरे मस्त था वो, बट ये भी ठीक है, अभी कैमरे निकाल रहे हैं, अफोर्डेबल है, मिड साइड सेडान है, फीचर वाइज सब कुछ है गाड़ी में। और वो गाड़ी एक्चुअली बनाई गई है थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास लोगों के लिए, मतलब जो मिडिल के थोड़ा ऊपर है, जो होंडा सिटी अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन कैमरी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है उसमें, ठीक है। तो ऐसा सब है। और इस बार का जो 2025 का कैमरी होने वाला है वो उसके फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन, मतलब ऐसा लगेगा कि फ्यूचर से आई हुई गाड़ी है, जो हम लोग देखते हैं ना कि कोई मसल कार है जो कि ऐसा लगता है 2035 से आया हुआ है, फ्यूचर कार बोलते ना अपन, उस तरीके से उसका डिज़ाइन होने वाला है। तो भाई मैं अभी तक तो चलाया नहीं कैमरी, पुराना वाला भी नहीं चला पाया, लेकिन कोशिश।
मुझे क्या लगता है कि कैमरी जो है ना, मतलब वो सबसे बैलेंस्ड कार है, मतलब बैलेंस्ड कार इन द सेंस कि वो ना किसी कार से बेटर है ना किसी कार से वर्स है, वो मतलब अपने ही अलग एक लीग में है। मतलब वो कार है ना बैलेंस्ड इन द सेंस कि मतलब उसमें ना वो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि मतलब ये सबसे बेस्ट है सेगमेंट में, और ना ही ऐसा कोई पॉइंट है कि जो खराब है, मतलब एकदम न्यूट्रल। और उसका ऑन रोड प्राइस कुछ तो 57 लाख के आसपास जाता है इंडिया में,
एक शोरूम प्राइस समथिंग 48
है। हाँ, तो अगर अपन 48 के मतलब एक शोरूम प्राइस के हिसाब से अगर देखे तो उस सेगमेंट में कंपटीशन
नहीं है,
उसका दो ही है। एक है मर्सिडीज की ए क्लास A200 जो आती है, और दूसरी है ये A4 Audi A4।
ओके,
लेकिन वो जो लग्जरी ब्रांड की सबसे एंट्री लेवल गाड़ी है, इसलिए उसमें उतने फीचर्स नहीं है जितने ये है, तो उसमें उतनी है। और तू अगर उससे बेटर जाएगा, मतलब मर्सिडीज सी क्लास या फिर BMW 3 सीरीज, तो वो 70-80 लाख, तो वो अलग सेगमेंट हो जाता है। तो कैमरी को कोई कंपटीशन नहीं है, और मतलब जितना मैं जानता हूँ कैमरी के बारे में, वो ड्राइवर्स कार नहीं है, मतलब उसको चलाने में मजा नहीं आएगा जैसे वो स्पोर्टी या फिर जो भी होता है। आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, वो एकदम काम उसका।
मेरा कैमरी के बारे में क्या सोच रहा है मालूम है क्या, कैमरी एक ऐसी गाड़ी है ना कि कोई एक बंदा है, समझो कोई बिजनेस पर्सन, जैसे कि मैं इन फ्यूचर अगर प्लान करूं कि मुझे BMW ऑडी मर्सिडीज इनमें एंट्री लेवल कार्स लेनी है, ठीक है, मेरा बजट हो गया, मैं एक अच्छी खासी एंट्री लेवल कार अफोर्ड कर सकता हूँ ये तीनों ब्रांड्स में, तो मेरी थिंकिंग ऐसी है कि मैं एंट्री लेवल कार्स के पास ना जाते हुए मैं टोयोटा की कैमरी परचेस करूँ,
जो कि प्रीमियम है,
प्रीमियम है, मतलब टोयोटा का उससे ऊपर कोई अभी तक प्रीमियम निकला नहीं है सेडान्स में। तो मेरे को सेडान बहुत ज्यादा पसंद है, लॉन्ग ड्राइव में सेडान्स का कम्फर्ट नेक्स्ट लेवल जाता है, तो क्यों ना हम एंट्री लेवल को छोड़ के भाई कैमरी के ऊपर जाए।
वो इंडिया में कैसा है ना, पहली बात तो SUV चाहिए,
हाइप है
वो, हाइप मतलब लोग सोचते नहीं कि फीचर्स और ये सब और ये सब,
आज इग्निस
बस वो SUV चाहिए बस,
आज मारुति इग्निस और एस्प्रेसो को भी SUV बोल के बेच रहे हैं,
तो अभी वो उसको तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फॉर्च्यूनर की तरह ज्यादा लोग जाते हैं, लेकिन वो माइंडसेट अब चेंज होगा नहीं होगा वो पता नहीं, चेंज होगा
माइंडसेट कब चेंज होगा मैं बताऊंगा, जब हमारे इंडिया के जो रोड्स हैं अगर वो सुधर जाए ना, तो मैं तेको बोल रहा हूँ कि जो सीडान्स हैचबैक्स और जो लो प्रोफाइल गाड़ियाँ हैं ना जिनका बहुत ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस कम है, उनका मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आज सब लोग SUVs क्यों डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि अपने पे स्पीड ब्रेकर्स नहीं है, एक्चुअली उनका नाम है रोड ब्रेकर्स, और सॉरी कार ब्रेकर्स, उनका नाम ही कार ब्रेकर्स, मतलब तुम उसके ऊपर जाओगे तो गाड़ी घसनी है। मेरी खुद की गाड़ी होंडा सिटी हर जगह से पिचकी हुई है, तो इंडिया के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं सुधरने वाला है तब तक ये सेडान्स का मार्केट ऐसा ही रहेगा, और सबको फॉर्च्यूनर और टाटा नेक्सॉन ही चाहिए क्योंकि उनका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, तो ग्राउंड क्लियरेंस के पीछे भागोगे तो यही मिलने वाला है। बट छोड़ो, हम लोग अपना टॉपिक से नहीं हटते हैं भाई। इस बार का कैमरी ने लिटरली अपने को बहुत सोचने पे मजबूर किया है कि वो कैमरे क्यों
नहीं। फीचर्स तो बहुत ज्यादा है,
फीचर सच
मतलब उसमें ऐसा कोई फीचर नहीं कि जो कोई लग्जरी कार में ना हो,
बराबर
सब फीचर है उसमें। 360 कैमरा है, उसके बाद में वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह, ये सब जो है वो सब जो फीचर
जो नेसेसिटी है आज के टाइम में,
मोर देन इनफ है। मतलब एवरीथिंग प्लस समथिंग ऐसा है उसमें फीचर्स
के, मतलब वो तुम्हारे डेली डेली यूज के लिए एकदम परफेक्ट कार है विद नाइस माइलेज। तुमको गाड़ी का
वो हाइब्रिड्स हाइब्रिड की वजह से माइलेज
और गाड़ी का अपीयरेंस ऐसा है ना, मुझे कई बार ऐसा देख के उसके बोनट को देख के लगता है ये सुपरा का आधा कट किया हुआ बोनट है, क्योंकि उसके जो हेडलाइट्स है थोड़े आगे है और वो बोनट थोड़ा पीछे, तो एक सुपरा वाला लुक देता है उसको अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी अच्छा है। और उसका जो भाई 2.5 लीटर का डायनामिक फोर्स इंजन अभी उन्होंने नया अपना बनाया है, तो नेक्स्ट लेवल इंजन है जो कि आराम से 25-30 का माइलेज निकाल सकता है, जिसमें अच्छा खासा टॉर्क भी जनरेट कर रहा है। वो 3200 आरपीएम पे 221 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर रहा है। सो मेरे को नहीं लगता ये इंजन कहीं पे भी फेल हो सकता है, बिकॉज वो टोयोटा है और टोयोटा की जो टोयोटा का जो इंजन है ना वो हम लोग देख सकते हैं कि भाई पिछले कई सालों से इतना रिलायबल चलता आ रहा है। मेरे पास मतलब मैं जब कार सर्विस करता हूँ तो इनोवा जो है 2004-05 का मॉडल जो आता था, फर्स्ट इनोवा जिसको हम बोलते थे, आज भी वो गाड़ी 6-7 लाख किलोमीटर ड्रिवन होने के बाद भी उसका इंजन एकदम स्मूथ काम करता है। सो टोयोटा उस मामले में तो है भाई, उसका मैकेनिकल जो है वो एकदम बेस्ट है। हो सकता है थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे उसका सर्विसिंग और मेंटेनेंस, बट गाड़ियाँ उनकी माइंड ब्लोइंग है। और इस बार का जो लुक निकाला है ना भाई साहब, मेरे को नहीं लगता ये कोई लेगा, क्योंकि सबको BMW मर्सिडीज चाहिए। ये लेगा वही बिजनेसमैन लेगा जिसका टोयोटा के ऊपर प्यार है, जैसे कि मैं होंडा यूज़ कर रहा हूँ। अभी मेरी नेक्स्ट कार ऑब्वियस होंडा होने वाली है, क्योंकि मैं होंडा को बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुका हूँ, मेरे को पता है उसका प्रीमियमनेस क्या है और उसका जो फील है। सो टोयोटा का जो कस्टमर होता है ना वो उनका लॉयल कस्टमर है, वो कहीं जाने वाला नहीं उनको छोड़ कर।
अभी आउटगोइंग गाड़ी में बस एक चेंज, मतलब एक इंजन के चेंज में बोलूं तो जो पहला वाला वर्जन था उसमें V6 इंजन आता था, मतलब V6 ऑप्शन देते थे वो लोग।
ओके,
जो अभी उन्होंने हटा दिया।
अगर वो लोग, मेरे को लगता है अगर 4 सिलेंडर पर कंसिस्टेंट रहे तो उनको माइलेज भी अच्छा मिल सकता है, क्योंकि इंडिया में 4 सिलेंडर का ट्रेंड बहुत अच्छा चल रहा है। उनके जितने भी 4 सिलेंडर इंजन है वो एकदम परफेक्ट काम करते हैं। अभी मैं सुना हूँ कि टोयोटा जो है हाइब्रिड के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा कर रहा है।
अभी एक अमेरिका तो हाइब्रिड हो गया, लेकिन जनरली हाइब्रिड कार के मामले में क्या क्या ओपिनियन है?
मेरा ओपिनियन है कि हम लोगों को हाइब्रिड कार को अडॉप्ट कर लेना चाहिए अपने यूज के हिसाब से, बिकॉज अगर देखा जाए ना तो इलेक्ट्रिक से एक्सपीरियंस बहुत बुरा है। इलेक्ट्रिक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर काफी 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 डाउन है अपने इंडिया का, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना भी लेती है ना हमारी इंडियन गवर्नमेंट, तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता है देखो क्या है, जो कोई नोटिस ही नहीं कर रहा है।
किसका? इलेक्ट्रिक का?
इलेक्ट्रिक का, कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज कर रहे हैं उस कार को चार्ज करने के लिए, एक्चुअली वो कोल बर्न करने से आ रहा है।
हाँ, वो तो
मतलब अल्टीमेटली तो, मतलब तुम क्या कर रहे हो, पॉल्यूशन और ज्यादा बढ़ा रहे हो।
उनका क्या है मतलब मानना कि इलेक्ट्रिक कार क्यों ला रहे, कि जो सिटी में पॉल्यूशन होता है रोड पे उसके लिए ये सोल्यूशन है।
अच्छा,
लेकिन तो वो ओवरऑल
ग्लोबल स्टेज
वार्मिंग का सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग का क्या है कि तुम फॉसिल फ्यूल्स पूरा ही बंद कर दो, मतलब करो ही मत, माइनिंग मत करो ना तुम सब ऑयल वगैरह,
तो तुम्हारे पास अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? कुछ भी नहीं है।
हाँ, तो है ही नहीं, वो एफिशिएंट ही नहीं है ना, सोलर एफिशिएंट है ना विंड एफिशिएंट है, और न्यूक्लियर पावर उतना मतलब स्टेबल नहीं है, वो डेंजरस कैटेगरी में
तो तुम
तो उनका इलेक्ट्रिक कार्स का जो सेलिंग पॉइंट बोलो या फिर जो भी उनका जो जस्टिफिकेशन बोलो वो यही है कि सिटी एरिया में गाड़ियों की वजह से जो पॉल्यूशन होता है वो कम हो जाएगा अगर सब गाड़ी इलेक्ट्रिक हो जाए। अच्छा। मेरा ओपिनियन ऐसा है कि फुल्ली इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट करने के लिए पहले हाइब्रिड से उसको ट्रांजिशन होना पड़ेगा,
मतलब
आइस इंजन से डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पे जाना। ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कुछ है, ना लोगों का माइंडसेट भी वो नहीं है, तो हाइब्रिड एक मिडिल ग्राउंड
अच्छा ऑप्शन है
कि आइस इंजन से एटलीस्ट हाइब्रिड तक तो आओ, फिर उधर से
इलेक्ट्रिक
तक जाने पे तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज्यादा डेवलप होगा तुम्हारा, क्योंकि जो हाइब्रिड कार्स अभी है माइल्ड हाइब्रिड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, मैं माइल्ड हाइब्रिड की बात नहीं करता क्योंकि उसका कुछ वो मोटर वगैरह कुछ ये नहीं होता, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड जो होते हैं उनका एक चीज ये है मतलब एडवांटेज की जब तुम सिटी में चला रहे हो तो वो अपना इलेक्ट्रिक मोटर पे चलता है, इंजन यूज नहीं करता, और जब उनको हाईवे पे स्पीड चाहिए फिर वो अपना पेट्रोल इंजन पे शिफ्ट कर लेगा। तो बस उतना ही है
हाइब्रिड कार से, मतलब इलेक्ट्रिक को लेके थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बदल गया है जब से मैं इलेक्ट्रिक बाइक यूज करना स्टार्ट किया था। मोपेड ओला लेने के बाद से मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब था। लोग बोलते हैं कि तुम ओला ले लो, तुम्हारा सिटी ड्राइव अच्छा होगा, तुम सिटी में एवरेज अच्छा मिलेगा तुमको, तुम्हारा पैसा सेव होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने ओला लिया, उसके बाद से सिटी ड्राइव में यूज़ किया, उसका कंपनी रेंज हम लोगों ने, मेरे पास S1 Pro है जो सबसे टॉप मॉडल था ओला का, वो लिया था। उसका कंपनी का रेंज है 145 किलोमीटर समथिंग, ठीक है, और अगर हम 1 फुल चार्ज पे चलाए ना, मेरे को वो रेंज देता है 80-85 का रेंज देता है, जो कि ना के बराबर 80-85 में हमारा दिन भर का काम भी नहीं हो पाता है, और वो गाड़ी उतना हैवी ड्यूटी भी नहीं है।
हैवी यूज के लिए
मेरा यूज कैसा है, मेरा वर्कशॉप के लिए मटेरियल लेके आना है, और उसका मोनोकॉक सस्पेंशन जो सिंगल शॉकर दिया है आगे, आज वो गाड़ी बंद पड़ा हुआ है, मेरे वर्कशॉप पर ही पड़ा है गाड़ी, और उनके पास पिछले एक साल से शॉकर्स अवेलेबल नहीं हो रहे कि भाई तुम अपना गाड़ी रिपेयर करके लेके जाओ, अगर तुम्हारे पास स्पेयर पार्टी नहीं थे तो गाड़ी मार्केट में लॉन्च किया क्यों। सेम इनका है ना, सब ईवी के साथ ना, टाटा नेक्सॉन का क्या प्रॉब्लम हो रहा है, टाटा नेक्सॉन ईवी, एक्चुअली मैं ईवी के बारे में बोल रहा हूँ, टाटा ने सबसे बड़ी गलती की कि नेक्सॉन को ईवी में बनाया, और वो एक टाटा का एक
सब गाड़ियां ईवी में बना रहे,
पता नहीं क्यों,
हैरियर भी ईवी आ रही है अभी
भाई, नहीं होने
सफारी ईवी आएगी,
हाँ, इसका प्रॉब्लम बाद में समझ में आएगा इनको, जब इनका रीसेल वैल्यू जो खराब होगा ना, अभी कैसा आईसी इंजन,
अभी वैसे भी उनका नाम खराब ही
है, आफ्टर सेल सर्विस तो खराब है ही भाई, आईसी इंजन पे मेरे को इतना भरोसा है कि 50 साल बाद भी अगर कोई गाड़ी पड़ा हुआ है और उसको हम लोग रिपेयर करने जाएगा तो रिपेयर हो जाएगा, बट इलेक्ट्रिक पे वो भरोसा नहीं है, ठीक है। टाटा का काफी अच्छा नाम हुआ जब उसने JLR को एक्वायर किया, उसके बाद उसने अपने प्लेटफॉर्म शेयर किए सफारी और हैरियर के साथ में, तो काफी अच्छा मार्केट बना, लेकिन उनको कोई जरूरत नहीं था नेक्सॉन को इतना हाइप बना के, उसको CNG में भी लॉन्च किया, उसको पेट्रोल में भी किया, उसको डीजल में भी किया, और अब आके उसको इलेक्ट्रिक में भी किया। उनको ऐसा लग रहा है कि टाटा नेक्सॉन उनका सक्सेसर है, बट उनको यही नहीं पता चल रहा है कि नेक्सॉन ही उनको डुबाएगा जाके आगे चल के, जब वो गाड़ी का आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिलेगा लोगों को, क्योंकि इलेक्ट्रिक में वही प्रॉब्लम होता है कि उसके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उसका जो प्रॉब्लम आता है, उसके बैटरीज इश्यूज जो होते हैं ना, वो कोई नहीं सेटल कर सकता है, और वो कभी हो भी नहीं पाएगा।
इलेक्ट्रिक का मेन मतलब मैं बोलूं तो मेन डिसएडवांटेज ये है कि उसका बैटरी का कॉस्ट ही, हाँ, गाड़ी का कुछ तो 70% बैटरी का ही कॉस्ट है। वो एथर देखने गया था शोरूम में,
हाँ,
तो जितना भी प्राइस था उसका कुछ तो 1,50,000-60,000, और फिर हमने पूछा कि उसका बैटरी का क्या है, अगर बैटरी इसका खत्म हो गया या खराब हो गया तो बैटरी रिप्लेस करने को क्या है कॉस्ट है, तो वो बोले 90,000, तो ना 1,50,000 में से 90,000 तो बैटरी का ही कॉस्ट है, तो वो इट्स नॉट फीजिबल ना।
अच्छा, वो बैटरी खराब हो गई, और हम लोगों ने कितने केसेस देखे हैं रिसेंट में कि गाड़ी नया लॉन्च हो और विद इन अ मंथ बैटरीज खराब हो रही है। इसका मतलब एक तो लिथियम आयन बैटरी जनरेट करने के लिए तुम 21 लाख गैलन लीटर्स का पानी वेस्ट करते हो, उसको पानी को खराब करते हो बैटरी बनाने के लिए, और वो बैटरी एक महीना भी नहीं चल रही है, और वो वेस्ट हो जाता है, वो डंप करते सीधा स्क्रैप में, फिर नया बैटरी वापस बनाते हैं। मतलब इससे तुम क्या कर रहे हो, तुम हमारे लिए कोई सोल्यूशन नहीं दे रहे हो, हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो हमारे फ्यूचर के लिए। अगर देखा जाए तो ईवीज हमारे लिए ही घातक होने वाला है एक टाइम के बाद में। लिथियम आयन बैटरीज ये बोल रहे सबसे सस्टेनेबल है, पावर सेवर है, कुछ नहीं है। अभी मैं जिन गाड़ियों पे काम करता हूँ, मेरे को मारुति नेक्सा का एक गाड़ी है, देखो बहुत ही अंडररेटेड गाड़ी है बट बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट आता है, उसका नाम है S-Cross। S-Cross एक ऐसी गाड़ी जो स्मार्ट हाइब्रिड के साथ भी आती है, और वो S-Cross इतना मस्त गाड़ी है ना, मैं सच्ची बोलूँ, अगर मेरे को कोई पूछे ना भाई बजट फ्रेंडली है थोड़ा सा अच्छा, मतलब मुझे क्लास चाहिए गाड़ी में, मैं बोलूँगा S-Cross ले ले भाई, भले मारुति का हो लेकिन वो स्मार्ट हाइब्रिड के साथ आता है, और इतना मस्त टेक्नोलॉजी, इतना स्मूथ बैलेंस है ना उनका, कि भाई तुमको आराम से ना 25 का एवरेज निकाल देती है गाड़ी अगर कोई लेने वाला हो तो, और वो डीजल में आती है सबसे बेस्ट, और डीजल के बाद भी इतना स्मूथनेस है ना गाड़ी के अंदर कि भाई तुम पता नहीं चलेगा तुमको कि कब वो स्विच कर रहा है, इतना स्मार्ट उसका जो मैकेनिज्म बनाया है ना, वो कभी लैग नहीं देता तुम लोगों को बीच में, पता नहीं चलने देता, जस्ट उसमें इंडिकेटर्स है, तुम यूज करो और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेम टोयोटा का तो भाई मैं अभी कोई स्मार्ट हाइब्रिड गाड़ी टोयोटा का चलाया नहीं, बट टोयोटा का जो रेफरेंस मतलब फीडबैक आया है मेरे पास काम करने के बाद, जैसे कि टोयोटा का ETIOS काम किया, टोयोटा का जो ETIOS गाड़ी है ना सेडान में, वो सबसे ज्यादा टैक्सी में क्यों यूज होता है पता तेरे को, एकदम लो कॉस्ट मेंटेनेंस गाड़ी है हाई एवरेज के साथ।
इनोवा का भी कोई सीन है ना,
इनोवा भी टैक्सी के लिए यूज होता है, बिकॉज जो ओनर होता है ना उसको गाड़ी के मेंटेनेंस के बारे में ध्यान देने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ गाड़ी चलाओ और पैसा कमाओ। और वो गाड़ी ढाई ढाई तीन तीन लाख किलोमीटर बिना इंजन में कुछ एडिशनल काम करे हुए निकाल देती है, उसका क्लच प्लेट चलता है 3-3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर मतलब मजाक है गाड़ी का,
उतना तो नॉर्मल गाड़ी,
नॉर्मल गाड़ी का लाइफ है, नॉर्मल गाड़ी का पूरा लाइफ खत्म हो जाएगा उसमें। जब फर्स्ट जनरेशन इनोवा को उन्होंने डिसकंटिन्यू किया और इनोवा ये लेके आए,
वो भी हाइब्रिड है ना,
क्रिस्टा जब लेके आए, क्रिस्टा जब लेके आए मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को, मतलब गाड़ी इतना मस्त लगा ना, प्यार हो गया गाड़ी से। लेकिन जैसे
अभी भी है
बट जैसे उन्होंने हाईक्रॉस निकाला ना, मेरे को ऐसा लगा उन्होंने इनोवा की इमेज को थोड़ा सा खराब कर दिया। हाईक्रॉस की एक्चुअली जरूरत नहीं थी, वो हाइब्रिड बनाया
हाइब्रिड के लिए,
लेकिन क्या जरूरत था हाईक्रॉस ऐसा बनाने के लिए सच, मतलब कुछ तुमने चेंजेस नहीं किया उसमें, बॉडी लाइन और खराब कर दी, बॉडी लाइन और खराब कर दी गाड़ी की। तुम देखो किसी को गाड़ी पसंद नहीं आएगा, और सेम इसने क्या किया अभी इनविक्टो बना दिया,
सेल्स में दिखेगा वो,
सेल्स है नहीं ना, चेक कर लो
हाईक्रॉस का सेल्स, क्योंकि अभी कैसा है क्रिस्टा भी सेल पे है और हाईक्रॉस भी है, तो वो सेल्स कंपेयर करे तो फिर
मैं बताता हूँ ना,
हाईक्रॉस और उसका सेल्स, हाईक्रॉस का तो कम ही होगा क्योंकि वो दिखती भी नहीं है ज्यादा रोड, मतलब वो उसका सेल्स फिगर देखने का भी जरूरत नहीं, वो तो समझ में आ जाएगा क्योंकि वो नहीं दिखती ज्यादा, नहीं होने के बावजूद भी
वो नहीं है, वो गाड़ी एक्चुअली है ही नहीं। अब क्या है ना, लोगों को क्या होता है कुछ नया चाहिए होता है, इसके लिए उन्होंने वो आजकल के लोग आ गए ना कि हर साल एक नया आईफोन अपग्रेड करना है, वैसे गाड़ियों के मार्केट
में नए फीचर्स, वो फीचर्स,
बस वो फीचर्स के लिए
आ जाते हैं। इंडियन माइंडसेट कैसा, अभी इंडियन माइंडसेट बहुत ऐसा हो चुका है कि उनको फीचर्स चाहिए बस, फीचर्स फीचर्स, जितने भी फीचर्स मिले, मतलब फीचर्स कौन से जो तुम्हारे अंदर जो है गाड़ी के
अंदर, इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स,
उनको ना इंजन से फर्क पड़ता है, उनको ना इंजन से फर्क पड़ता है, ना राइड क्वालिटी से फर्क पड़ता है, ना गाड़ी का एक्सटीरियर कैसा है उस पे फर्क पड़ता है।
अभी देखना ये जो एक रिपोर्ट निकला था मई 2023 का, जिसमें क्या बोला गया है, टोयोटा सोल्ड मोर यूनिट्स ऑफ क्रिस्टा कंपेयर टू हाईक्रॉस, टोयोटा सोल्ड 4786 यूनिट ऑफ क्रिस्टा एज कंपेयर टू हाईक्रॉस का सेल था 2990, मतलब ऑलमोस्ट आधा। तो मेरा अंदाज गलत नहीं था, हमारा जो
आईडिया तो रोड पे दिख जाता ना,
नहीं, मेरा देखो हम लोग जो है ना, मतलब मैं जिस फील्ड में हूँ ना, ऑटोमोबाइल हमारा डेली हमारे हाथ के नीचे गाड़ियां होती है, तो मेरे को समझ में आता है ये गाड़ी मार्केट में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और हाईक्रॉस को देखने के साथ ही मेरे को ऐसा लगा था ये मार्केट में आएगा नहीं, क्योंकि वो उसका लुक ही खराब कर दिया गाड़ी। अगर तुम सच में इंप्रूव करना चाहते थे ना कि भाई नहीं मेरे को क्रिस्टा को और बेटर बनाना है, तो तुम अच्छे से उसको अपग्रेड करते, थोड़ा टाइम लेके, क्रिस्टा को अभी ना डिसकंटिन्यू करने का कोई सेंस नहीं बनता है, अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, तुम एक 2-3 साल का गैप लेते, स्टडी करते और फिर क्रिस्टा को अपग्रेड करते, तो मेरे को
शायद कंफ्यूजन हो गया क्योंकि इनोवा एमपीवी है, तो
वो फुल साइज एसयूवी बनाने की कोशिश कर रहे थे,
हाई क्रॉस एमपीवी भी नहीं लगती और वो फुल्ली एसयूवी भी नहीं, क्योंकि वो एसयूवी ये नहीं है, मतलब वो ऑल व्हील ड्राइव नहीं है, तो फ्रंट व्हील ड्राइव है वो,
तो फिर सेंस क्या बना उसका,
ना उसको तुम ऑफ रोड लेके जा सकते, तो वो एसयूवी
नहीं, तो नहीं जा सकते हो तुम उसके साथ,
और वो एमपीवी भी नहीं दिखती क्योंकि उसका जो स्टांस है गाड़ी का लुक वो
उठाया हुआ है, बल्की टाइप दिया हुआ
है, थोड़ा बल्की किया है वो, और वो मतलब वो सामने से देखोगे तो उसको लगता है कि एसयूवी है, लेकिन
वो है नहीं एक्चुअली, पीछे से जाओ पता चल जाएगा गाड़ी क्या है,
गाड़ी के अंदर का एसयूवी का नहीं है वो,
नहीं, तो वो मजा नहीं आया,
वो कंफ्यूजन हो गया, मतलब ना उनको एसयूवी
वो किसी भी कैटेगरी में लाए नहीं कर दिया,
इनोवा क्रिस्टा लगती है, एमपीवी है प्रॉपर टैक्सी वाली गाड़ी, अच्छी लगती है,
इनोवा बेस्ट गाड़ी मेरे हिसाब से, अगर कोई भी बोले कि आज भी सेकंड हैंड वैल्यू अगर इनोवा की पूछो ना, 2006 का इनोवा अभी हमारे पास सेल के लिए आया था, उसका डिमांड था पता कितना, 3.5 लाख रुपए 2006 का गाड़ी, ऑलमोस्ट कितना 20 साल होने आ गया, 2 साल में 20 साल, मतलब 18 साल की गाड़ी हो गई है, अभी भी 3.5 लाख में बिक रही है। हाँ भाई अब तुम नए गाड़ियां जो आ रही है आज उनको बेच के दिखाओ तो बेच ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसका मार्केट वैल्यू खत्म हो चुका है।
टोयोटा और होंडा
रीसेल वैल्यू जबरदस्त
है उसका, रीसेल वैल्यू
बिकॉज रीजन, तुम 1.5-2 लाख किलोमीटर चलाओ इंजन, मेरा गाड़ी 1.5 लाख किलोमीटर चल गया, आज भी स्टार्टर मारो एक सेल्फ पे स्टार्ट होगा और गाड़ी एकदम स्मूथ चलेगा, उसमें कोई ऐसा लैग नहीं आया और मक्खन चलता है गाड़ी, एक कॉन्फिडेंस भी देता है अपने यूजर को कि भाई तुम कभी किसी को बीच में धोखा नहीं देने वाले।
लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता इंजन मेन, क्योंकि गाड़ी जब तुम खरीदते हो एक्चुअली तुम गाड़ी नहीं खरीदते हो, तुम इंजन खरीदते हो,
तुम इंजन खरीदते हो,
आपके बिल पे अगर आप देखोगे जो इनवॉइस आता है या फिर जो बिल आता है आपकी शोरूम का, आप जाके देखना वो प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट गाड़ी नहीं होता, प्रोडक्ट इंजन होता है, गाड़ी तो उसके साथ बॉडी आती है उसकी, आप ट्रक देखो जो ऐसे नंगे देखे
होंगे, चैसी में आता है,
हाँ तो वो खरीदते है ना
बस,
बॉडी तो वो लगा के लेते बाहर से, तो गाड़ियों का भी वो होता है, लेकिन लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ता, उनको उल्टा वो चाहिए, मतलब बॉडी क्या है वो फीचर्स के अंदर अंदर।
अच्छा मेरे को इस बात पर मतलब इस टॉपिक से मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आया है कि अगर समझ इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा ऑप्शन है कि तुम अपनी गाड़ी कस्टमाइज कर सकते हो, मतलब तुमको ये गाड़ी का चैसी मिल जाए, इसका इंजन आ जाए, मतलब जैसा हम किसी गेम्स में करते, जैसा तू एनएफएस में करता होगा कि भाई इसका इंजन इसमें स्वैप कर दो, जैसा ट्रक वाले करते कैबिन खुद का बनवाते, तो कैसा लगता, क्या होगा मार्केट का नतीजा, क्या निकलेगा
वो मार्केट? देख उसमें क्या होगा, जिसको समझ है वो कपड़े खरीदने जैसा हो जाएगा फिर।
हाँ तो ठीक है,
जिसका फैशन सेंस अच्छा है वो अच्छा दिखेगा,
अच्छी बात है,
तो वो गाड़ियों का भी हो जाएगा। जिसकी गाड़ियों में समझ अच्छी है, सेंस अच्छा है, उसकी गाड़ी उतनी,
तो उसके लिए फिर डीलर बैठे हैं ना, डीलर सजेस्ट करें, अगर किसी को कुछ नहीं पता है, वो नया है, उसको गाड़ियों के बारे में कुछ नहीं पता, उनको डीलर सजेस्ट करेंगे ना आपके यूज के हिसाब से, वो आपको सजेस्ट करेंगे आप ये पैकेज लो, इसमें आपका गाड़ी अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट चीज निकलेगा भाई कि मेरे को अगर कोई बोले कि तुमको बजट फ्रेंडली गाड़ी चाहिए, तो मैं उसमें हर एक चीज ऐसा लगवाऊंगा कि जो मेरे फायदे का हो, एज कम्पेयर टू बाकी क्या, बाकी के लोग क्या सोचते हैं मेरे को उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ऑप्शन होना चाहिए इन फ्यूचर, अगर आ जाएगा ना तो मजा आएगा।
इंडिया में प्रॉब्लम क्या है बताएगा, उस दिन मैंने ये टीम बीएसपी के फोरम में भी डाला था कि क्या हुआ था उस दिन, मेरा वीपीएन ऑन था, यूएसए का प्रॉक्सी था, और मैं ऐसे ही देख रहा था मर्सिडीज का गाड़ी, तो वो यूएसए का वेबसाइट खुल गया।
अच्छा
ठीक है, तो उसमें क्या आता, मतलब जो बाहर की वेबसाइट्स होती है ना, उसमें ना गाड़ी का मॉडल देखा, मतलब उसमें प्रोडक्ट सेक्शन में जाके गाड़ी देखा ना, तो नीचे कॉन्फिगर करके आता, कॉन्फिगर मतलब कॉन्फिगरेशन में फिर ऑप्शंस क्या क्या आते कि तुमको कौन सा इंजन चाहिए उसमें, पेट्रोल डीजल, पेट्रोल में भी दो ऑप्शन रहते, डीजल में भी दो ऑप्शन रहते, थोड़ा पावरफुल थोड़ा कम, या हाइब्रिड चाहिए तो हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड चाहिए तो वो वाला, जो भी मतलब ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, और हर एक कस्टमाइजेशन था उसमें, मतलब एलॉय व्हील्स कौन से चाहिए, व्हील का साइज क्या चाहिए, कलर कौन सा चाहिए, कैलिपर के कलर तक का भी उसमें कस्टमाइजेशन ऑप्शन था,
जैसा रोल्स रॉयल आज दे रहा है अपने कस्टमर्स को। हाँ,
तो मतलब रोल्स रॉयल लेवल का नहीं था, लेकिन काफी कुछ था जो नॉर्मली तो होता भी नहीं है। तो और एक्सटीरियर में भी कौन सा पैक चाहिए, मतलब वो लेदर का ये लेके कौन सा एक्सटीरियर, इंटीरियर का जो हेडलाइनर का कलर है, वो बहुत सारी चीजें कस्टमाइजेबल थी, वो थी यूएसए की वेबसाइट।
ओके,
मुझे रियलाइज हुआ क्योंकि नीचे फिर कॉन्फिगर करने के बाद तो डॉलर्स में आए साइन, तो मैं समझ गया कि ये यूएसए की वेबसाइट है। फिर मैं वीपीएन बंद करके जब इंडिया की वेबसाइट पे आया,
कोई ऑप्शन
कुछ ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन क्या था,
पैकेज सेल कर रहे,
ऑप्शन क्या था सिर्फ कलर का, गाड़ी का कलर बस,
वही ले सकते हो,
ना व्हील्स का ऑप्शन था, ना इंटीरियर का कुछ ऑप्शन था ना। तो मैंने जब ये फॉर्म में डाला तो उन्होंने मेनली ये चीज बोला कि इंडिया में है ना लोग गाड़िया मतलब कस्टमाइज करने वाला मार्केट बहुत कम है, लोगों को फर्क नहीं पड़ता, ये
आफ्टर मार्केट कस्टमाइजेशन में ज्यादा डील करते हैं, उनके दिमाग में दो ही चीज आती है, एग्जॉस्ट चेंज कर दो, स्पॉइलर डाल दो, व्हील बाहर निकाल लो, हो गया मॉडल,
हेडलाइट वगैरह,
हेडलाइट चेंज कर लो, डीआरएल चेंज कर लो, इंजन को मॉड करने वाला कोई है ही नहीं।
वो तो
अभी
वो
कुछ लोग हैं जो कोडिंग करके अपने ईसीएम से तुम्हारा वॉल टाइमिंग वेरिएबल कर देते हैं, जिससे कि क्या मिलता है तुमको, एडिशनल बूस्ट मिल जाता है, लेकिन फ्यूल कंजम्पशन,
वो भी इलेक्ट्रॉनिक ही है ना,
वो इलेक्ट्रॉनिक है, बट अगर तुम मैकेनिकल कोशिश करो, इंडिया में आज तक ऐसा कोई है ही नहीं जो तुमको ऐसा बना के दे। समझो तुम्हारे पास अगर काफी अच्छा गाड़ी है, जैसे स्कोडा का सुपर्ब ले लो, अभी तक का मतलब ऐसा गाड़ी है जिसके ऊपर तुम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, वो
स्कोडा का सबसे
प्रीमियम गाड़ी है,
फ्लैगशिप गाड़ी है,
फ्लैगशिप गाड़ी बोल सकते हो, बट उसको भी मॉड करने वाला इंडिया में अभी तक कोई मिला नहीं है ऐसा।
मॉड इंडिया में सिर्फ मैंने देखा है वोक्सवैगन की गाड़ियों करते, पोलो वगैरह को मॉड करते हुए देखा है, या फिर होंडा
की सस्टेनेबल इंजन,
होंडा सिविक वगैरह को मॉडिफाई किए करता,
पुरानी गाड़ियों के साथ में जिसका कम इलेक्ट्रॉनिक्स है। आज तुम ज्यादा जो हाईफाई गाड़ी है, जैसे 2024 में BS6 का नाम निकला है, हर एक गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छे है, बट वो इलेक्ट्रॉनिक्स से तुम छेड़छाड़ नहीं कर सकते और मॉड करने में दिक्कत,
मैकेनिकल वो खत्म कर देगा।
हाँ, तो तुम जितना मैकेनिकल चेंज करोगे तुमको इलेक्ट्रॉनिक्स से ज्यादा छेड़छाड़ करना पड़ेगा, और आजकल जो ECM के वायरिंग आते हैं, जो वायरिंग हैमर्स आते हैं, अगर उसको ओपन करके देखेगा ना भाई, चक्कर आ जाएगा
उसमें, नर्वस सिस्टम जैसे दिखता है वो, आया था ना वो महिंद्रा का भी लॉन्च वाले को BE, उसमें उन्होंने वो वायर हार्नेस का स्केलेटन लगाया था पूरा, ऐसा दिख रहा था जैसे अपना अंदर का डायग्राम दिखता है बॉडी का।
सोच अगर कोई भी बंदा मॉड करने जाएगा तो उस गाड़ी के लिए उसको 4 साल लग जाएंगे मॉड करने के लिए, तब तक
इसलिए पुरानी गाड़ियों पे ही मॉड करते हैं ना, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कुछ होता ही नहीं।
देख अभी तक अगर मैं देखू ना तो 1, 2, 3, 4, 5 अभी जो कैमरी आ रहा है ना 2025 में, ये कैमरी का 6th generation है। मतलब कैमरी टोयोटा वालों ने इसके ऊपर बहुत सोचा और बहुत आराम आराम से उसके ऊपर काम करते गए और अब जाके उसको एक अच्छा वेरिएंट निकाला उन्होंने. और मेरे को लगता है कि इसके पहले का जो वेरिएंट था उसमें भी कोई कमी नहीं थी गाड़ी में.
वो गाड़ी में, वो गाड़ी कैसी है पता है क्या, वो गाड़ी ऐसी ही है, उसमें कोई कमी
नहीं है. नहीं, वो कमी एक्चुअली में,
और वो ऐसी गाड़ी भी नहीं है फिर की, मतलब उसका कोई ऐसा एक सेलिंग पॉइंट नहीं है कि यार इसका इंजन बहुत जबरदस्त है या फिर इसका सस्पेंशन बहुत जबरदस्त
है, सब कुछ ही अच्छा है.
तो उसका सब कुछ बैलेंस्ड है और अच्छा है और मतलब उसमें कंप्लेन करने की कोई जगह नहीं बचती फिर.
नहीं, गाड़ी के मामले में तो काफी अच्छा है. देखो अगर फ्यूचर में प्लान हुआ कोशिश करूंगा भाई गाड़ी लेने का, अगर
मेरी तो
बजट हुआ तो.
रोड पे भी जब मुझे कैमरी दिखती है ना, उसके अंदर जो बैठा हुआ इंसान आता है वो भी शक्ल से सोफिस्टिकेटेड
दिखता है, एकदम एकदम वो सॉर्टेड होता है अपना, उसकी डिसीजंस पता है.
और ज्यादा करके शोफर ड्रिवन ही होती है, ड्राइवर ही होती है, मतलब ड्राइवर ही होता है चलाने को.
नहीं बस मेरे को कैमरी का एक सीन क्या लग रहा है, 48 लाख रुपीस एक शोरूम प्राइस है. अगर तुम ऑन रोड प्राइसिंग देखो 55 के अप्रॉक्स चली जाती है,
57.
तो मैं सोचता हूँ यार जब रोला जमाना ही है तो 57 में फॉर्च्यूनर क्यों ना ले ली जाए.
यही मतलब सब
मतलब मेरा दिमाग वो बोलता
है, माइंडसेट वही होता है.
हाँ तो देखो मेरा एज, हमारा एज कम है, एज कम होने की वजह से क्या हमको शौक है चीजों का, तो चीजों का शौक. मैं बोलता हूँ कि कैमरी एक ऐसा गाड़ी है जो 50 ईयर्स का जो सेगमेंट है ना उनके लिए टारगेट एकदम बेस्ट है, क्योंकि वो ज्यादा हाईफाई चीजें नहीं चाहिए
और वो खुद तो चलेंगे नहीं ड्राइवर के साथ.
उनकी लाइफ में सिंपलिसिटी बहुत क्लियर होती है, उनको सिंपल लाइफ चाहिए होती है, वो कैमरी चला सकते हैं.
मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, जिसको एक जगह से सिर्फ दूसरी जगह जाना है,
हमको मस्ती करने तो भाई, हमको 55 लाख में फॉर्च्यूनर क्यों नहीं चाहिए भाई.
तो इसीलिए फिर वो उसका ही हो जाता है.
लेकिन फॉर्च्यूनर के साथ भी ना इंसाफी हो रही है, उसका प्राइसिंग एक्चुअली 25 लाख मैन्युफैक्चरिंग है, उसके ऊपर 50%
वो तो एक अलग अलग पॉडकास्ट
हो जाएगा भाई, मतलब
वो अलग एपिसोड हो जाएगा वो,
उसके बारे में तो जितना बोलोगे उतना थक जाओगे तुम.
ड्यूटी वाला वो अलग ही ये हो जाएगा, वो अलग एपिसोड ही बन जाएगा उस पे.